हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विक्रांत रंधावा को एहसास हो चुका था कि तारा कहीं और नहीं बल्कि स्टोर रूम में बंद है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि राधिका ने बंद किया है, क्योंकि राधिका की आँखें और मन विक्रांत रंधावा अच्छी तरह से पढ़ चुका था। वहीं तारा अपनी मौज मस्ती में खोई हुई थी। वो कभी उड़ रही थी तो कभी कुछ खा रही थी, कभी खेल रही थी। उसने उसे कमरे को अपने लिए एक तरह का प्लेइंग ग्राउंड बना लिया था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तारा जैसे चाहती थी उसने बिल्कुल अपना कमरा वैसा सजा लिया था, एकदम परियों की लोक के जैसा। तारा बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रही थी। तभी विक्रांत रंधावा के कहने पर अमन ने बारीकी से हर कमरे की, हर एक कैबिन की अच्छी तरह से जांच करनी शुरू कर दी थी। सारे वॉशरूम रूम वगैरह भी अमन ने पर्सनली जाकर चेक किए थे। अब केवल स्टोर रूम ही बचा था, लेकिन अमन को लग रहा था कि बड़ा स्टोर रूम में तारा का क्या काम, तो इसीलिए वो वहाँ नहीं जा रहा था। लेकिन तभी विक्रांत रंधावा ने कहा, मुझे लगता है हमें एक बार स्टोर रूम भी देख लेना चाहिए, क्योंकि केवल यही एक जगह बची है। हो सकता है कोई फाइल वगैरह लेने के लिए वो स्टोर रूम में आ गई और यहाँ पर लॉक हो गई हो, या कुछ और भी हो सकता है। विक्रांत रंधावा ने अपना अंदेशा जाहिर किया था। विक्रांत की बात सुनकर अमन ने विक्रांत से कहा था, ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे ही अमन ने ये कहा, राधिका की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी और वो बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसका भेद अब खुलने वाला है। आज उसकी नौकरी के साथ साथ उसके प्यार के साथ साथ उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। जल्दी ही अमन ने स्टोर रूम के बाहर से जाकर खटखटाना शुरू कर दिया था, और दरवाजे को क्लोज देखकर अब तो अमन को भी यकीन हो चुका था कि हो ना हो तारा जरूर इसे स्टोर रूम में होगी। और उसने तेजी से उसे दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया था, और एक ही झटके में उसने वो दरवाजा अलग कर दिया था। उसने सामने देखा कि तारा उसके ठीक दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही अमन ने तारा को देखा, उसने जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा लिया था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि तारा एक तो माँ बनने वाली थी और ऊपर से ऐसी हालत में तारा को देखकर उसकी सांस ही रुक गई थी। और वो जल्दी से लेकर उसे बाहर की ओर भागा था, और उसने उसे हटाकर उसके ऊपर पानी छिड़का था, और फिर तारा होश में आने का नाटक करने लगी थी। और होश में आने पर वो सोचने लगी थी, जब वो स्टोर रूम, तारा को बाहर की आवाज़ एक पल में ही सुनाई दे गई थी, और वो समझ चुकी थी कि अमन और विक्रांत, इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं कहाँ हूँ, तो इसीलिए तारा ने जल्दी से उसको स्टोर रूम को पहले जैसा कर दिया था, और खुद दरवाजे के ठीक पास में बेहोश होने का नाटक करने लगी थी। अमन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसके सामने खड़ा हुआ था, और वो खुद को ही दोष दे रहा था कि आखिर क्यों उसने एक बार फिर से लापरवाही कर दी और तारा को अकेला छोड़ दिया। तारा को अकेला छोड़ने ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। अब अमन को लगने लगा था कि जरूर कोई काली शक्ति नहा धोकर तारा के पीछे पड़ चुकी है और वो तारा की जान लेना चाहती है। उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसी काली शक्ति का नहीं बल्कि एक इंसान का था जो उससे मोहब्बत करती थी, और उसी ने तारा को वहाँ पर कैद कर दिया था। जैसे ही तारा होश में आई, अमन ने उससे पूछा था, मिस तारा, क्या क्या हुआ था आपको, और आप स्टोर रूम में कैसे गई, और आप वहाँ पर लॉक कैसे हो गई? जैसे ही अमन ने ये सवाल तारा से पूछा, तारा राधिका की ओर देखने लगी थी और फिर कुछ सोचते हुए वो अमन से बोली थी, वो एक्चुअली सर, आपने शर्मा प्रोजेक्ट की फाइल मांगी थी, तो उसकी कॉपी तो मेरे पास थी और उसकी दूसरी कॉपी स्टोर रूम में रखी हुई थी, तो बस मैं वही लेने के लिए वहाँ गई थी, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, अचानक से वहाँ का दरवाज़ा जाम हो गया था, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और फिर मैं अंधेरे से भी थोड़ा डर गई थी और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तारा ने साफ साफ झूठ बोल दिया था। वहीं विक्रांत रंधावा तारा को हैरानी से देखने लगा था, और वो सोचने लगा था कि ये इस लड़की राधिका का नाम क्यों नहीं ले रही है। आखिरकार तारा के झूठ बोलने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये झूठ क्यों बोल रही है? ये चाहती तो इस लड़की को अभी धक्के मारकर यहाँ से निकलवा सकती थी, तो भी इस तरह से झूठ बोलने का क्या मतलब है? विक्रांत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा अब तारा पर भी आने लगा था। तारा की बात सुनकर अब थोड़ा ठंडा पड़ गया था। वो तो सोच रहा था कि किसी काली शक्ति का हाथ तारा को इस तरह से स्टोर रूम में बंद करने के पीछे, लेकिन अब तो तारा के बयान से ये साबित हो चुका था कि तारा खुद बखुद वहाँ पर दरवाज़ा जाम होने की वजह से कैद हुई हुई थी। वहीं राधिका ने जब तारा को इस तरह से झूठ बोलते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहाना निकले थे और वो उसके पश्चाताप के आंसू थे। राधिका मन ही मन में सोच रही थी कि मैं कितनी गलत थी, मैंने इस लड़की को परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और जबकि ये तो दिल की इतनी अच्छी है। तारा के अच्छे मन को देखकर राधिका के दिल का मैल भी धुल गया था। राधिका के आंसुओं ने उसके दिल का सारा मैल धो दिया था। वही मल्लिका दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। उसे उन सब लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी तारा को किसी ने अगवा नहीं किया था, तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था तारा मिले या ना मिले। वो तो बस विक्रांत के बारे में सोच जा रही थी कि विक्रांत ने उसे आज बुढ़िया कहा था, तो उसे कहीं न कहीं लगने लगा था कि कहीं विक्रांत को उस पर शक तो नहीं हो गया है। मल्लिका को कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि विक्रांत रंधावा उसका सच जान चुका है, इसीलिए उसे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए उसने विक्रांत रंधावा की जान लेने का फैसला कर लिया था। आखिर वो काली शक्तियों की चुड़ैल थी, तो कितनी सारी शक्तियाँ उसके पास थी, तो उसकी नज़र में तो विक्रांत रंधावा एक मामूली इंसान था, तो वो आसानी से विक्रांत रंधावा की जान ले सकती थी। इसीलिए मल्लिका ने विक्रांत रंधावा की जान लेने के लिए कुछ प्लान्स रेडी कर लिए थे। उसने ये सब काम बिना अमित को बताए करने का फैसला किया था, क्योंकि अब वो अमित को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दिया करती थी। वो केवल अमित को तब तक ही साथ थी जब तक कि वो तिलस्मी पत्थर उसे नहीं मिल जाता, या फिर अमित के द्वारा उसे अमन का जिस्म नहीं मिल जाता। जब तक वो अमन के जिस्म के साथ रिश्ता नहीं बना लेती, तब तक ही वो अमित के साथ थी। इसीलिए उसने अब अपने सिरे से ही विक्रांत रंधावा की जान लेने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर तारा अब काफी हद तक ठीक थी, क्योंकि ठीक तो वो पहले थी, लेकिन जो कि वो एक्टिंग कर रही थी, तो इसीलिए अमन उसे अपने कैबिन में ले आया था और वहाँ पर उसका बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा था। हालांकि विक्रांत रंधावा का मन बार बार तारा को देखने का कर रहा था, लेकिन वो इस तरह से अमन और तारा के सामने नहीं जा सकता था, क्योंकि तारा इस वक्त अमन के कैबिन में थी और अमन ने साफ साफ मना कर दिया था कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि ये बात उसके स्टाफ को नहीं पता थी। स्टाफ को तो यही लग रहा था कि तारा अपने कैबिन में है, लेकिन ऐसा नहीं था। अमन ने रंधावा से कह दिया था कि वो ध्यान रखें कि कोई भी उसके कैबिन में ना आ पाए,
क्योंकि वो तारा के साथ है। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने ये सुना था, उसके गुस्से का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अमन की उस वक्त रखवाली ही कर सकता था। अमन ने कितनी ही देर तक तारा को अपनी बाहों में भर रखा था और उसे प्यार करता रहा था और बोला था, आज तुम मेरी आंखों के सामने से कुछ पल के लिए गायब किया हो गई। ऐसा लग रहा था मानो मेरी सांस ही रुक गई हो। ऐसा फिर कभी मत करना, तुम में मेरी सांसें अटकी हुई हैं। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी उसे स्टोर रूम में जाने की? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी जान मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी भी तरह का तुम्हारी जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, समझी तुम? अमन की बात सुनकर तारा मुस्कुराने लगी थी और बोली थी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके? और मुझे लगता है हमें यहाँ पर एक साथ एक घंटे से ज्यादा हो गया है। अगर हम इस तरह से एक साथ एक केबिन में बंद रहेंगे तो न जाने हमारे बारे में विक्रांत जी और बाकी सब न जाने क्या सोचेंगे। तब अमन ने तड़प कर तारा से कहा था, अभी भी तुम्हें सबकी फिक्र हो रही है कि कोई क्या सोचेगा। तुम जानते भी हो तुम्हारी गायब होने पर मेरी क्या हालत हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म में जान ही न बची हो, और तुम्हें अभी भी दुनिया वालों की फिक्र हो रही है। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ, और अगर तुम्हें यही लग रहा है कि ऑफिस वाले क्या सोचेंगे, कोई क्या सोचेगा, तो मैं अभी जाकर सब ऑफिस वालों के सामने जाकर बता देता हूँ कि तुम असल में मेरी हो कौन और तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। अमन की बात सुनकर तारा उसे हैरानी से देखने लगी थी और बोली थी, आप क्यों परेशान होते हैं? मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, तो फिर क्या जरूरत है किसी को कुछ भी बताने की? और डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितना कमजोर आप मुझे समझते हैं, तारा ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा था। तब अमन ने तारा से कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली हो, आखिरकार तुमने एक शक्तिशाली जिन्न से शादी की है, तो तुम आम लड़की तो कोई हो नहीं सकती, मुझे अच्छी तरह से पता है। प्रणाम।